हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 4। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। शब्दों का अर्थ देखिए। अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन ने कहा, अर्जुन पूछ रहा है। अब भगवान ने, क्योंकि परंपरा के विषय में बताया ना कि पहले मैंने सूर्य देव को दिया और सूर्य देव से फिर ये परंपरा स्टार्ट हुई, तो अर्जुन आज ये प्रश्न पूछ रहा है। अपरम भवतो जन्म, अपरम का मतलब होता है अर्वाचीन या कनिष्ठ, मतलब इसका मतलब जूनियर, कि आप अभी छोटे, आप तो अभी के हो यानी आधुनिक हो, और भवतो यानी आपका जन्म, यानी आपका जन्म तो अभी हुआ है, और आगे परम जन्म विवस्वता। परम मतलब श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, बड़े हैं, सीनियर है। जन्म मतलब जन्म से, विवस्वता विवस्वान यानी सूर्य देव, यानी आप तो अभी आए हो, सूर्य देव तो बहुत पुराने हैं। तो कथम एतद् विजानीयम्, कथम मतलब कैसे, एतद् मतलब ये, विजानीयम मतलब मैं कैसे समझूं। त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, त्वम मतलब तुमने, आदौ मतलब स्टार्ट में, प्रोक्तवान यानी उपदेश दिया था, इति यानी इस प्रकार, यानी अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि तुम तो अभी वेदा हुए ना मेरे साथ, और सूर्य देव तो बहुत पुराने हैं, कब से हैं, तो फिर उस टाइम पर आपने कैसे दिया था, आप तो अब भी आए हो, पहले थोड़े थे। अनुवाद देखिए। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले ही हो चुके हैं यानी ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सादृजातं सहगणरघुनाथ वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता माते की जय हो। अध्याय चार श्लोक नंबर चार। आज अर्जुन भगवान से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले भगवान ने कहा कि परंपरा मैंने स्टार्ट की और मैंने सबसे पहले सूर्य देव को ज्ञान दिया, तो ये श्लोक नंबर वन में कहा था। अब श्लोक नंबर टू में क्या कहा कि इस तरह से परंपरा चल रही थी और फिर ये परंपरा टूट गई, और थ्री में बताया कि वही परंपरा को मैं दोबारा से तुम से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। आपको मैं अब ए स एवायम माया तेज्य योग प्रोक्त पुरातन, वही वाला पुराना वाला योग मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ तुमसे वापस से। वो विधि क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम है तदुत्तम, तो तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र है, इसलिए ये दिव्य रहस्य तो समझ सकता है। तो अभी अर्जुन जो है ना वो समझ रहा था पहले कि मुझे शायद सूर्य देव के विषय में और भी भगवान बताएंगे, लेकिन डायरेक्ट से भगवान ने सूर्यदेव का विषय खत्म कर दिया और फिर अब बता रहे कि अब तुम्हें ज्ञान देना है मुझे। तो अर्जुन ने सोचा अभी वो वाला विषय तो खत्म हो गया, अब तो मुझे ज्ञान देने के लिए बात आ रही है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सूर्यदेव को दिया कैसे पहले इसने, ये तो इतना अभी आया है, तो सूर्यदेव तो कितने पुराने हैं। तो ये सूर्यदेव को ज्ञान दिया था ये समय में बात आई नहीं है, तो फिर अर्जुन से भगवान यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं। वास्तव में क्या है कि ये जो हम अभी कर्मयोग शुरू के जो से अध्याय है, उसमें क्या है, कर्म योग की पराकाष्ठा कैसे भक्ति है, ऐसे इसको भगवान ने ना बताया है। तो इस कर्म योग की पराकाष्ठा यानी कि ये विधि कर्म योग है और उसके जरिए आपको भक्ति तक कैसे पहुंचना है, ऐसे है ना। तो इसमें भगवान खुद को केंद्र नहीं बनाते ना? कि मैं माम मई मैं, ये इस तरह के श्लोक नहीं बोले हैं बार, बस एक दो बार कोई ऐसे श्लोक बोले हैं, लेकिन ज्यादातर कर्मयोग को फोकस किया है। लेकिन जब बीच के अध्याय आते हैं ना, 6 अध्याय 7 से लेकर 12 तक, तो उसमें भगवान ने खुद को केंद्र दिया, बार बार बोला है क्या, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वम, तो मई सर्वम इदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, हर चीज उसमें जो ये अहम सर्वस्य प्रभु, ये जो भक्ति योग की 6 अध्याय है ना, जिसमें भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई कर्म योग नहीं, कोई ज्ञान योग नहीं, उसमें भगवान ने खुद को केंद्र किया है। लेकिन ये जो शुरू के 6 अध्याय है, इसमें भगवान ने खुद को केंद्र नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, आपके विषय में बताओ, आपको कैसे पता या आपने शुरू में कैसे दिया, अब ये पूरे इन 6 अध्याय में ये एक मतलब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। कुछ लोग जैसे भगवान अपने जन्म का और अपने ना आने का कारण बताएंगे, और भगवान अर्जुन को बताएंगे कि मैं और आप भले ही दिखते सेम हैं, लेकिन हमारी स्थिति एकदम अलग है। तो इसके विषय में आज भगवान बताएंगे। लेकिन आज अर्जुन ने क्या पूछा कि सूर्य देवी वत्सवान आपसे पहले ही आ चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने इस विद्या का उपदेश किया था। ये बहुत ही सुंदर भाव है ना, मतलब एक तरह से चुनौती, ये चैलेंजिंग मूड लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि है ना आपने पहले उसको दिया। लेकिन ऐसे ऐसे नहीं कहा अर्जुन ने कि नहीं भाई मैं नहीं मानता कि है ना ऐसा हो सकता है, क्या आपने कैसे दिया होगा, आप तो छोटे हो, ऐसे नहीं बोला। इसमें भी नम्रता का भाव है, यानी कि वो कह रहा है कि आप तो कह रहे हो कि आपने दिया था, परंतु कथमे तत्विजानी, तो मैं मेरी बुद्धि ये बात समझ नहीं पा रही है, यानी कि नम्रता से पूछ रहे, मैं ये कैसे समझ सकता हूँ कि आपने दिया। तो ये जो नम्रता का भाव है ना, इससे जब हम प्रश्न करते हैं, भगवान अभी श्री रूपा जी बहुत क्लियर करेंगे 4.34 में इसको, जब तक यदि प्रणिपाते ना कहा आएगा ना श्लोक, उसमें वास्तव में क्या होता है, जब हम चैलेंजिंग मूड में प्रश्न करते ना, तो भले वक्ता जो होता है ना वो अच्छा सा भी रिप्लाई करेगा ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोला उसने। लेकिन जब आपका नम्र भाव होगा ना, तो वक्ता भले आपको संक्षिप्त में थोड़ी सी चीज बताता है, लेकिन क्योंकि चैत्य गुरु आपके हृदय में बैठा हुआ है ना, वो वहां पर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना, हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान, क्योंकि आपकी जिज्ञासा को देखता है वो, तो हृदय के अंदर बैठा हुआ भगवान आपकी जिज्ञासा के अनुसार आपके हृदय में ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित करते। लेकिन जब ही हमारा मूड जो है चैलेंजिंग हो जाता है, सामने वाले को चुनौती देना चाहते ना, फिर हमें वो बोले कितना ही क्लियर करके बताएगा ना वो बात, फिर भी हमको समझ में नहीं आएगा, हम बोलेंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसकी तो बात ही समझ में नहीं आ रही। तो मतलब क्वेश्चन करने से पहले आपके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विनम्रता की। तो अर्जुन भी बड़े ही विनम्र भाव से पूछ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने कैसे बताया होगा, आप तो अभी आए हो। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से अर्जुन के प्रश्न को समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। अब भक्त है ना अर्जुन तो कृष्ण का, तो उसे तो बस आंख बंद करके विश्वास कर देना चाहिए। लेकिन क्यों पूछ रहा है श्री प्रभुपाद जी, बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। ये अर्जुन की जिज्ञासा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई प्रश्न करते ना सीनियर डिवोटीज, तो उनको वो खबर होती है, उस प्रश्न का उत्तर भी खबर होती है, लेकिन वो करते किस लिए है? क्योंकि जो दूसरे नए जूनियर आए हैं वो प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अभी नए हैं, हेजिटेशन होगी, लेकिन प्रश्न नहीं करेंगे तो हृदय के अंदर कुछ न कुछ कचरा लेके चले जाएंगे, वो सही समझ नहीं पाएंगे। तो सीनियर डिवोटी प्रश्न पूछते हैं ताकि सबको समझ में आए। इसलिए अर्जुन भी उन लोगों के लिए जो भगवान के दिव्य स्वरूप को, भगवान की दिव्य रूप को नहीं समझते हैं, उनके लिए पूछ रहे हैं। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि वो असुर जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, यानी कि यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि जो ये नहीं मानते हैं कि कृष्ण भगवान है वो असुर है। और श्री प्रभुपाद जी कहते उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो, सिर्फ उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए। जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता है कि कृष्ण भगवान है और प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्मा की चरम सीमा है, यानी कि कृष्ण परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवं पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुं। 10.12 ये प्रभुपाद जी याद करा रहे कि 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 में आपको ये पता चल जाएगा कि अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण को मूल स्रोत तथा ब्रह्म की भी सीमा परम ब्रह्म मानते हैं। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे हैं। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं कृष्ण परम कारण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहे हैं। केवल असुर ही उसे अस्वीकार करते हैं, जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से यह प्रश्न कर रहा है। अब कुछ भी हो, कोई मानता है नहीं मानता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, लेकिन फिर भी अर्जुन इसी, क्योंकि भगवान ही परम अपने विषय में सही तरह से बताएंगे अपने विस्तार के विषय में, तो उन्हीं से अर्जुन आज प्रश्न कर रहा है। किसके लिए? सामान्य जनता को ये बताने के लिए कि कृष्ण की स्थिति क्या है। इसलिए अर्जुन साक्षात भगवान से प्रश्न कर रहा है, जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, इससे बचा जा सके। अब स्वयं भगवान बताएंगे तो फिर उसमें तो कोई भी संदेह नहीं होगा, तो फिर इसलिए अर्जुन बोले अगर मैं अपनी तरफ से कहूंगा तो फिर है ना उसमें ये बोलेंगे भाई अर्जुन ने कहा, लेकिन अगर भगवान जो के परम प्रमाण है वो अपने मुख से बताएंगे तो उसको कोई भी स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। भगवान के विषय में भगवान के अतिरिक्त कोई और जान भी नहीं सकता है, इसलिए आवश्यक है। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि भगवान सबके आदि हैं। अब जो हमसे पहले है वो हमसे पहले था, तो फिर हम जो अभी आए तो उनके विषय में कैसे जान सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं जान सकते, लेकिन भगवान अपने विषय में केवल स्वयं जान सकते हैं। तो जब भगवान बताएंगे तो ये सबके लिए मंगलमय होगा। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब भले असुर इस बात को समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन भक्तगण भगवान के इन वाक्यों का सदैव आदर करेंगे, और क्योंकि वो सदैव ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, और जब भगवान स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं तो कौन सा भक्त होगा जो उसको सुनकर आनंदित नहीं होगा। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझेंगे, समझ सकेंगे, क्योंकि वो उनको असामान्य मानते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं अपने विषय में बताएंगे, ऐसा होता है पता है, उनको एक जैन धर्म है या फिर कोई धर्म है, उसमें कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, पता है कैसे, कि कृष्ण है भगवान, लेकिन क्योंकि संसार में आए थे ना जब, तो उन्होंने भौतिक शरीर धारण किया था, तो भौतिक शरीर धारण करने की वजह से उन्होंने बहुत सारे अपराध कर लिए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, जैसे चोरी करना और है ना रास खेलना लड़कियों के साथ और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें कर दी थी। तो अब भी कृष्ण नरक में चले गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपराध किया है, तो प्रकृति का नियम है कि नरक में जाना होता है। तो अभी कृष्ण नरक में चले गए हैं, फिर जब वापिस से आएंगे ना तो अच्छे मतलब उनका अपराध की सजा मिल जाएगी उनको, फिर वापस से वो भगवान बन जाएंगे, मतलब कुछ ऐसी धारणा है उनकी। तो ऐसी क्योंकि कुछ तथ्य नहीं है इस धारणा का, लेकिन बस अपनी मनमति से ऐसे भगवान के विषय में, अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान बहुत अच्छा बताएंगे अभी अपने आने के विषय में कि मैं आता हूँ तो क्या करता हूँ, जन्म कर्म सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस बात को नहीं मानते हैं, वो अपनी मति से सिर्फ है ना कुछ भी बोल देते हैं। तो सूर्य के विषय में यदि यहाँ पर बैठ के हम चार लोग बैठ के कहें कि सूर्य अस्त नहीं हुआ है, मर गया है, अब वापिस से वो कल दूसरा शरीर इख्तियार करेगा, नए शरीर में वो परिवर्तित हो जाएगा, तो हम बैठ के भले कितने ही मनसूबे बनाए, सूर्य तो वही है, अभी आज रात हो गई तो वो अस्त हो गया, कल सुबह वही का वही सूर्य उदय होगा, ऐसा थोड़ी है, रोजाना नया सूर्य उदय होता है, एक मर जाता है तो हम, या फिर उल्लू बैठ के ये डिसाइड करें कि भाई सूर्य होता ही नहीं है, वो रात को उठ जाते हैं और सूर्य को देखते ही नहीं है, तो फिर अगर वो बैठ के बोलते हैं कि सूर्य नहीं होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य नहीं है। और तो भगवान भी, भगवान की दिव्य स्थिति भी किसी असुर या किसी, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसी रास्कर के प्रमाण की मोहताज नहीं है भगवान की रियलिटी, कि वो जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम भगवान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो उल्लू की तरह अपने अंधे नेत्रों से यदि सूर्य को नहीं देख सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सूर्य नहीं है। उसी तरह जब कोई जीव भगवान को नहीं रियलाइज कर रहा है या भगवान के आत्मज्ञान को नहीं समझ पा रहा, आत्म साक्षात्कार नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते, अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी कृष्ण के दिव्य रूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसे प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुण के अधीन एक सामान्य व्यक्ति जानते, जो ऐसा समझते हैं कि कृष्ण का स्वरूप भी भौतिक प्रकृति का बना हुआ है और गुण उस पर असर करते हैं, उनके लिए एक चुनौती है। अब जो कृष्ण का जो उत्तर होगा वही इस समस्त समस्या का समाधान करेगा, और कृष्ण की बात तो क्योंकि प्रामाणिक है, गीता ने जो कहा है कृष्ण ने वही प्रमाण है। तो फिर आज देखते हैं भगवान क्या कहते हैं अपने विषय में। श्लोक नंबर 5, कृपया मेरे साथ साथ भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन पवित्र शब्दों का उच्चारण कीजिए। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेत्थ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। शब्दों का अर्थ देखिए। श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान जो षडेश्वरी से युक्त है वो कह रहे हैं क्या? बहूनि में व्यतीतानि, बहूनि मतलब अनेक, में मना मेरे, व्यतीतानि, आज भगवान अपने विषय में बात कर रहे हैं कि अर्जुन मुझे साधारण नाम समझो। क्यों? क्योंकि बहूनि अनेक में मेरे व्यतीतानि बीत चुके हैं क्या? जन्मानि जन्म। तव च अर्जुन, और तुम्हारे भी हुए हैं अर्जुन। फिर आगे तानि अहम वेद, तानि मतलब उन सबको, अहम मतलब मैं, वेद या जानता हूँ, सर्वाणी मैं उन सबको जानता हूँ। न त्वं वेत्थ परन्तप, न मतलब नहीं, त्वं मतलब तुम, वेत्थ मतलब जानते हो, परन्तप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अनुवाद देखिए। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में 5.30 में हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। क्या लिखा है ब्रह्म संहिता 5.33 में? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, मैं उन अनादि रूप अनादि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत है, यानी उनके जैसा कोई नहीं, अच्युत है यानी कभी भी कोई गलती नहीं करते, अनादि है, उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई स्टार्ट नहीं है, और पुराण आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वो भले ही सबसे पुराने हो, यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन भले कितना ही पुराने उन्होंने बहुत सारे अवतारों में विस्तार किया है, लेकिन सुंदर बात है, ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर कहते हैं, आर्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वो भले ही सबसे पहले आदि पुरुष हो, सबसे पुराने हो, लेकिन सदैव नवीन लगते हैं, सदैव नौजवान होते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते, कभी क्षय नहीं होते हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु वे तो भी वे आदि पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त विशुद्ध अनन्य भक्त जो होते हैं, उनको तो उनके दर्शन नित्य ही रहते हैं, क्योंकि वेदों को पढ़ने वाले भले भगवान को समझ सके या ना समझ सके उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अदुर्लभम कुछ भी मुश्किल नहीं है आत्म भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं। आगे ब्रह्म संहिता में 5.39 में यही बात यह भी कहा गया है, भगवान के अलग अलग रूपों यानी अवतारों के विषय में कहा गया, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरो भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमा पुमान्यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात मैं उन भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठा, रामादि मतलब राम श्री राम, नरसिंह आदि मतलब और बहुत सारे अवतार तथा अंश अवतार में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात हैं। कृष्ण स्वयं समभवत परम अपमान्य, वो फिर भी कृष्ण के रूप में कृष्ण के नाम से विख्यात हैं और आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते, यानी कि वो स्वयं आते हैं अवतार लेते, कभी लीलाएं करते हैं, कभी अपने अंशों के अवतार को देते हैं, लेकिन वो सदैव अपना एक ओरिजिनल रूप है उनका और कृष्ण है वो, कृष्ण स्वयं समभवत, उन्हीं से बाकी सब विस्तार हो रहा है। इसे मैं आदि पुरुष गोविंद को प्रणाम करता हूँ। श्री प्रभुपाद जी कहते वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, वे उस विदुर्य वायदुर्य के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। एक वैदुर्य मणि होती है जो अक्सर अपना रंग बदलती रहती है, लेकिन इसका मतलब नहीं ये नहीं कि उसके गुण भी बदलते हैं, गुण वही रहते हैं लेकिन उसके उसका रंग परिवर्तित होता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान भी उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इस सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति ही समझ सकते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से इसको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त, श्री प्रभुपाद जी बोलते भगवान कोई आपके इन जो भौतिक इंद्रियां हैं उनसे समझे नहीं जा सकते, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। तो जब हमारे ऊपर किसी शुद्ध भक्ति शुद्ध वैष्णव की या स्वयं भगवान की कृपा होती तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, वेदों को पढ़ने से शास्त्रों को पढ़ने से समझ नहीं सकते। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर है कि अर्जुन को भगवान कहते तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत सारे जन्म हो गए, मैं तो तुम्हारे भी जानता हूँ अपने भी जानता हूँ, तुम तो अपने भी नहीं जानते हो। तो इसका मतलब ये कि भगवान जो है वो सबके विषय में सब कुछ जानते हैं। तो क्योंकि अर्जुन जैसे भगवान के पार्षद होते हैं वो सदैव लीला में उनका साथ उनके साथ साथ अवतार लेते हैं, अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान को किया था उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, वो अर्जुन के रूप में नहीं था, उसका शरीर अलग था, तो उस तो उस समय भी लेकिन था, ऐसा नहीं कि वो नहीं था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान यह घटना याद रख सकते हैं किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सकता। अंश रूप जीव आत्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। क्या अंतर है? कि हमारे ऊपर माया का प्रभाव होता है जिसके कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं, परंतु भगवान के ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता है और भगवान सदैव सब कुछ जानते रहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से छुपा हुआ हो। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया, क्या कहा है अर्जुन को? न तुम वीत परंतप। परंतप का मतलब होता है बहुत ही आप वीर हो, शत्रुओं का दमन करने वाले हो, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भले वो कितनी बड़ी, अर्जुन तो मनुष्य रूप में है, यदि इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा शिव भी आ जाए तो भी भगवान के साथ वो कभी भी समता नहीं कर सकते हैं। तो साधारण जीव भला कैसे कर सकते हैं? भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त रूप हो, मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भले वो मुक्त नित्य मुक्त हो जो भगवान के नित्य पार्षद है, लेकिन भगवान के समान कभी भी नहीं हो सकते। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। ऐसा ना आदि अच्युतम अद्वैतम अच्युतम अनादिम। तो अच्युत का मतलब होता है भले ही वो किसी भी मायावी जगत में रहते हो, इस भौतिक जगत में भी आए, लेकिन वो सदैव दिव्य ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में आने के बाद उनकी भी प्राकृत इंद्रियां हो जाती है हमारी तरह। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत ही भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाते हैं, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त भी है ना, भगवान की बात को नहीं समझ सकते हैं या भगवान के कामों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा फिर समय के साथ भगवान उनको दिव्य प्रकाश देते हैं, तो जिससे वो समझ जाते हैं। तो जो भगवान की भक्त होते उन्हें तो दैवी कृपा प्राप्त हो जाती है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते। फलस्वरूप गीता के विवरण यानी असुरी मस्तिष्कों में नहीं पढ़ पाते, यानी कि वो जो उनकी बुद्धि ऐसी आसुरी होती है तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता के या ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता है। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीव आत्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को भूलते नहीं हैं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान को अद्वैत इसलिए कहा जाता है कि भगवान का जो शरीर है ना, वो भी आत्मा की तरह दिव्य है, उसमें द्वी नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं तो हमारे जैसे साधारण बन जाते हैं, फिर भी वो दिव्य ही रहते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोकों में करेंगे। अब असुर लोग है ना, वो इस बात को समझ नहीं पाते कि वो इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक जगत में जब आता है तो कैसे ही वो दिव्य रह सकता है। लेकिन वो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज तो ये समझना है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी की बात खत्म हुआ, इस श्लोक में हमें क्या समझने को मिल रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि, मुझे वो सब याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक आत्मा परिवर्तित होती है, दूसरा शरीर लेती है, यानी कि आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है तब पहले वाले शरीर की स्मृति ज्यादा तरीके से 80% या 85% ऐसा होता है कि पिछले जन्म का आपको कुछ भी याद नहीं होता है। किसी किसी को 5% में थोड़ा थोड़ा, किसी किसी को, वो तो बहुत ही विरले कोई जीव होते हैं जिनको कुछ याद रह जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि कुछ भी याद नहीं रहता। वो कैसे होता है पता है? जैसे हम रात को सोते हैं, दोपहर को जागते हैं, मतलब सुबह को जागते हैं और रात को सोते हैं, फिर जब रात को हम सो जाते हैं ना, वो एक मृत्यु के बाद जन्म लेने का एक छोटा सा ट्रेलर है। कैसे कि जब आप रात को सोए तो जब जिस टाइम पर आप सो गए थे उस टाइम पर आपको याद नहीं आया कि आपके कितने बच्चे हैं, आप घर में क्या, मतलब आपके ऑफिस में क्या हो वो सो, या ना घर में आपकी क्या स्थिति है, क्या है कुछ नहीं। अगर कोई दुख भी होता है ना, तो भगवान कहते हैं मपोहनम च मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, मैं आपको उस टाइम पर बुला देता हूँ। क्योंकि यदि किसी को कोई दुख हो ना, अगर दुख असहनीय हो और वो भूल नहीं जाए ना थोड़ी देर के लिए उसको, तो कभी सो नहीं सके, है ना, उसको कभी भी आराम ना आए। यदि वो कितने से अपराध हम करते हैं, यदि हम अपने अपराधों को खाली याद करें ना, भूल ना पाए ना थोड़ी देर के लिए, जैसे भूल जाते हैं ना हम, अगर भूल ना जाए ना, तो इंसान का जीना हराम हो जाए। क्योंकि अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को और ये सब अपनी टेंशन्स को अगर हम थोड़ी भूल जाते हैं ना, तो हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि हमें भूलने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन जब जीव सो रहा होता है तब कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं क्या हूँ। फिर वो एक अपने सपनों की नई दुनिया बसाता है जिसमें वो स्वयं राजा होता है और उसकी रानी भी होती है, उसका महल भी होता है और वो एक ड्रीम लैंड में रहते हैं, है ना। फिर सुबह को जब उठता है वो, तो फिर वो जो सपने वाली पूरी बात थी ना, वो भूल जाता है, है ना। फिर वही उसको अपना अस्तित्व याद आ जाता है कि मैं इसका पति हूँ, इसकी पत्नी हूँ, ये बच्चे हैं मेरे, मुझे ये ऑफिस जाना है, मुझे इनको स्कूल छोड़ने जाना है, या पत्नी सोचती है मुझे आज घर में ये काम करना है, कपड़े धोने हैं, तब वो राजा रानी वाली बात बिल्कुल भूल जाते हैं ना। इसी तरह से जन्म परिवर्तन जब होता है ना, तो हम भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या करतूत किए थे। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तान्यहम वेद सर्वाणि, लेकिन मैं वो सब कुछ जानता हूँ। तो अर्जुन से पूछ सकता है कि चलो ठीक है, तुम अपने बारे में जानते हो ना, मेरे बारे में कैसे जानते हो? मैं तो ना, मेरे बारे में तुम कैसे जानते हो, मैं तो अलग हूँ। तो फिर भगवान संक्षिप्त में उसे बताएंगे कि तुम मुझसे, मैं तुम्हें खुद से कभी अलग करता ही नहीं हूँ, सदैव मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन तुम मुझे यह जानो कि मैं सदैव तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ होता। तो पूछा कि तुम मेरे हृदय में बैठ के मेरा करते क्या हो तुम मेरे साथ? तो बोला मैं देख रहा होता हूँ तुम्हारी ओर, तुम संसार में आनंद लेने के लिए कोशिश करते हो और मैं तुम्हें देखता हूँ। तो तुम मुझे क्यों देखते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जो प्यार करता है किसी से, वो उसको देखता है कि कब वो मेरी ओर देखेगा। आप कभी है ना ऐसे ट्राई करके देखो, जिससे भी आप प्यार करोगे ना, वो जब जा रहा होगा ना आपसे दूर, तो आप उसको ध्यान से देख रहे होगे कि काश वो मेरे पास मुड़े, काश वो मेरी ओर मुड़े, काश वो मेरी ओर एक बार वापिस से देखे मुझे। तो इस तरह से भगवान जो है वो हृदय के अंदर बैठे हुए उपदृष्टा। उपदृष्ट का मतलब ये नहीं है कि बस अंदर बैठा हुआ है आपके अपराध नोट करने के लिए, वो बैठा हुआ है आपकी ओर देखने के लिए कि कब मेरा प्रिय, मेरा स्नेही, मेरा भक्त मेरी ओर देखेगा और मैं उसे इस दुख भरी जीवन से मुक्ति दिला दूंगा। तो भगवान इसी आशा से जीव को देखते हैं कि कब वो भौतिक इंद्र तृप्ति को छोड़कर मेरी ओर आएगा, और फिर मैं उसे यद गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमम मम, मैं उसे अपने धाम में ले जाऊंगा जहाँ पर उसे कोई भी मुश्किल नहीं होगी, कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। तो जीव आत्मा क्यों भूल जाता है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तान्यहम वेद सर्वाणी, मुझे सब याद होता है लेकिन तुम भूल जाते हो। तो जीव क्यों भूल जाता है? मनुष्य भगवान भूलते नहीं है, हम सब भूल जाते, क्योंकि हम शरीर परिवर्तन कर देते हैं, वो वाला शरीर छोड़ देते हैं और नया वाला शरीर हम अनधारण करते हैं। तो पिछले वाले शरीर की स्मृति हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान का शरीर चेंज नहीं होता है, भगवान का शरीर वही रहता है, वही दिव्यता है। उसके अंदर भौतिक शरीर की तरह हमारी तरह चेंजिंग नहीं होती। वो भगवान क्या करते हैं, अपने रूप को कन्वर्ट कर देते हैं, वही होते हैं भगवान। जैसे हम अब भी अगर मैं यही हूँ और मैं कोई कॉस्ट्यूम पहन लूँ किसी और का, तो मुझे अपने शरीर के बारे में विस्मृति नहीं होगी। इसी तरह से भगवान जो है वो अलग अलग रूप धारण करते हैं, लेकिन वो वही रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर परिवर्तन करते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये हाल है इतना बुरा कि शरीर परिवर्तन की तो बात ही छोड़ो, हमें अभी किसी को याद नहीं होगा कि अभी जैसे 2014 चल रहा है, तो मतलब इससे 10 साल पहले हमारी क्या कंडीशन थी, 10 साल के पहले हम लोगों ने क्या किया था, इस समय हम क्या कर रहे थे, किस किस से मेरी मित्रता थी, स्कूल में हम जब पढ़ते थे तो बहुत ही कम लोग को सही से याद होता है कि हम लोग किस तरह से, हमें कंडीशन होती थी, मैं क्या करता था, क्या चीजें मुझे अच्छी लगती थी क्या नहीं, मुझे क्या आता था, कौन सी टीचर मुझे मारती थी, सब कुछ याद नहीं होता है। लेकिन कुछ चीजें याद रहती है, लेकिन वो तो 10-15 साल पुरानी बात तो छोड़ ही दे। अभी अगर यहाँ पर हम बोले ना कि अब बगैर सोचे बताओ कि परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी, तो भी सोचना पड़ेगा कि परसों मैंने पता नहीं क्या खाया था, इसे ध्यान लगाना पड़ता है। तो हमारे जैसी इतनी कम बुद्धि वाले लोग जो होते हैं, जो कि अब परसों मैंने खुद खाया, मैंने खुद बनाया, मुझे भी याद नहीं होता है, तो फिर है ना हम क्या जन्म जन्मांतर को याद रखेंगे, क्या भगवान को याद रखेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर बताते हैं 7.26 में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के कारण मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और भविष्य में घटित होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। यही फर्क है भगवान में और हम में। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि जीव सब कुछ नहीं जान सकता, सारे लोग को विषय में क्या, अपने विषय में भी नहीं जान सकता। तो जीव और भगवान में बहुत अंतर होता है, और भगवान आज से अपने विषय में बताना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक स्टार्ट किया है अर्जुन के इस प्रश्न ने, कमाल कर दिया। कर्म योग में भक्ति योग को लेकर आ गए, तो कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।